रंगा जम्मा की जमीन काश्त करने वाला किसान दूसरे दिन अपनी बैलगाड़ी ले आया। गाड़ी में सवार होकर धर्माराव अपनी माँ बहनों के साथ रंगापुर पहुँच गया। स्त्रियों को गाड़ी में बिठाया गया और स्वयं धर्माराव और उसके दोनों जीजा पैदल चले। बड़े जीजा सूर्य नारायण ने सारा कार्यभार संभाला। धर्माराव ने बचे कुछ 15 रुपये उनके हाथ में रख दिए। गंगाधर जी के वंश वाले कई लोग रंगापुर में थे, पर उनकी आपस में अनबन थी। उन्हें निमंत्रण देने और बुला लाने में दोपहर हो गई। अरुंधति के लिए 15 रुपये की साड़ी लाई गई, पर उसे देखकर समधिन नागम्मा ने नाक भौं सिकोड़ ली। कहने लगी, आज तक एक भी अच्छा कपड़ा लत्ता हमारी लड़की के पल्ले नहीं पड़ा। एकाध रेशमी साड़ी आज भी उसे नसीब न हुई। मैं पहले से ही कह रही थी कि यह रिश्ता जोड़कर लड़की का गला घोंट रहे हैं। यह सुनकर सावित्री देवी भी चुप नहीं रही। बोली, हम तुम्हारी लड़की ब्याहने खुद नहीं आए थे, तुम्हारे ही गिड़गिड़ाने पर शादी की। इतनी अच्छी साड़ी पर भी संतोष नहीं। सुबन्ना पेठ में सभी लोगों को साड़ी बहुत पसंद आई थी। आग सुलग सुलग कर भड़क उठी। गंगाधर जी चुप्पी साधे रहे। अंत में सावित्री देवी झल्ला कर अपने बेटे से कहने लगी, चलो बेटा लौट चलें, यह गर्भाधान नहीं चाहिए, कौन सुनेगा इनकी बातें। परंतु बंधु बांधवों ने बीच बचाव करके ज्यों त्यों शांति स्थापित कराई। इसी तूतू मैमय में सांझ हो गई। धर्माराव और अरुंधति को सेज पर बिठाया गया। सुहागिनों ने गीत गाए। गानों के साथ साथ हास परिहास की सीमा न रही। आधी रात बीत गई, परंतु स्त्रियां वहां से टलने का नाम न लेती थी। पान के बीड़े बनाकर पहले धर्माराव के मुंह में दिए गए और आधा बीड़ा कटवाकर अरुंधति को दिया गया। अरुंधति ने वह आधा बीड़ा नहीं खाया। स्त्रियां उस पर बहुत बिगड़ीं। अरुंधति रोने लगी। कई प्रकार के खेल रचाए गए, पर अरुंधति उनमें भाग नहीं ले रही थी, किसी का कहा नहीं मानती थी। धर्माराव ने उसके हाथों और गले में चंदन लगाया। अरुंधति ने मुँह फेर लिया। कोई भी उसके हाथ से धर्माराव को चंदन न लगवा सका। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। अरुंधति के बर्ताव के कारण धर्माराव का उत्साह आधा मर चुका था। कमरे का द्वार बंद करते ही अरुंधति द्वार के पास जा खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद धर्माराव ने उसे पास बुलाया, वह नहीं आई। फिर धर्माराव ने खुद जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अरुंधति अपना हाथ छुड़ाकर रोने लगी। इसी प्रकार कुछ देर तक प्रयत्न करके धर्माराव सेज पर जाकर लेट गया, पर उसे नींद न आई। अरुंधति का विवाह होने के बाद 2 वर्ष भी न बीते थे कि रामेश्वर शास्त्री को बुरे दिन देखने पड़ गए। तब से दोनों परिवारों में मनमुटाव बढ़ता गया। सयानी होने के बाद अरुंधति ने एक बार ही पति के विषय में अच्छी बात नहीं सुनी थी। सास के विषय में, मरने के बाद भी ससुर के विषय में और पति के विषय में वह निंदा ही निंदा सुनती रही। बच्चों को अपने माता पिता पर ही अभिमान होता है, अतएव जो लोग माता पिता को अप्रिय होते हैं वे बच्चों को भी अप्रिय लगते हैं। अरुंधति अपनी माँ से दिन रात सुनती आई थी कि उसके ससुराल वालों ने उसे कोई कपड़ा गहना नहीं दिया। विवाह के समय वह बहुत छोटी थी, अतएव रामेश्वर शास्त्री ने उसके लिए कोई गहना नहीं बनवाया। गहनों की बाबत नकद 1000 रुपये उन्होंने गंगाधर जी को दे दिए थे। उस रकम को आज भी गंगाधर जी ब्याज पर दे रहे थे। उनकी इच्छा थी कि उस रकम से जमीन खरीदी जाए। अतएव सयानी होने के बाद भी गंगाधर जी ने अपनी लड़की के लिए गहने नहीं बनवाए। अरुंधति को इस बात का पता ही न था। वह इतना ही जानती थी कि उसके तन पर गहने नहीं हैं। उसका विश्वास था कि ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं दिया। उसकी निर्धनता किसी से छिपी न थी। इतना ही नहीं, उसके माता पिता उसके पति की भी निंदा करते थे। पिता कहते थे कि धर्माराव एकदम निकम्मा है। माँ पड़ोसियों से कहती, आहा क्या दामाद मिला है, समझ लो कि बिटिया की किस्मत से मिला है। इन बातों से अरुंधति के मन में पति के प्रति अनादर ही बढ़ता गया था। रात के 3 पहर बीत गए। धर्माराव फिर एक बार अरुंधति के पास गया और उसे समझाने लगा, आज किस घड़ी का मैं 10 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मेरी धर्मपत्नी, मेरी गृहस्वामिनी, मेरी भाग्य देवी मेरे घर आएगी तो घर में सर्वत्र लक्ष्मी का साक्षात्कार होगा। मुझसे तुम इतनी अप्रसन्न क्यों हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? फिर थोड़ी देर बाद उसने डांट बताई, तुमने मेरी बात न मानोगी तो मैं कल ही अपने गांव लौट जाऊंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। संसार में पति द्वारा छोड़ी हुई स्त्री बदनामी का शिकार हो जाती है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। यह बुद्धि तुम में आप ही आप पैदा हुई या किसी ने तुम्हें सिखा रखा है? मेरे भाग फूटे जो तुम में तुमसे पाला पड़ा है। फिर कुछ समय बाद वह बेजार होकर कहने लगा, मेरे भाग ही ऐसे हैं, तुम रत्नों की राशि लगती हो, सोचा था तुम मेरी हो, पर यहाँ का तो और ही रंग ढंग है। फिर वह धमकी देने लगा, तुम मेरे हाथ से खूब मार खाओगी, मैं बड़ा बुरा आदमी हूँ। गुस्सा आ जाने पर मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। मेरी बात मानो, नहीं तो बहुत पछताओगी, खबरदार। थोड़ी देर बाद उसने तिरस्कार के स्वर में कहा, कहाँ जाएगी माता पिता की उल्टी खोपड़ी। मेरे पिता ने उन्हें उबारा, पर उन्होंने हमसे ही बैर ठाना। जब तुम्हारे पुरखे भीख मांग रहे थे, तब मेरे दादा ने उनसे रिश्ता करके उन पर उपकार किया था। उस उपकार का आज यह बदला चुका रहे हैं। तुम भी तो उनके ही पेट में जन्मी हो। गाय खेत में चरने लगे तो बछड़ा मेड़ पर क्यों चरने लगा। ये बातें अरुंधति को बहुत बुरी लगीं, तथापि कुछ नई नई बातों का उसे ज्ञान हो रहा था। क्या उसके ससुर के कारण ही उसके माता पिता धनवान बने थे? इतने में धर्मराव फिर कहने लगा, मेरे नाना सोमन्ना ने बड़ी मिन्नतें करके 3 बरस की उम्र में तुम्हें मेरे गले बांध दिया था। वे ऐसा ना करते तो मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता अवश्य आता, मुझे अच्छा ससुर मिलता, तो शायद ससुराल वाले दुर्दिन में मेरी सहायता भी करते। पर हम तो दोनों तरफ से घाटे में रहे, और अब क्या देखता हूँ कि बुनियाद से ही सब कुछ बिगड़ गया है। मेरे मुंह में रखी गिलोरी तुम नहीं खाओगी, फुलझड़ी मुझ पर नहीं फेंकोगी, मेरे गले में चंदन नहीं लगाओगी। यह सब मैंने जो किया था, वही करने में तुम्हें क्या आपत्ति थी? कम से कम मान मर्यादा के लिए तो करती, पर मान मर्यादा कहाँ से आएगी? उस रक्त में होती तभी तो आती। पलनाडु प्रांत के असभ्य लोगों को और दक्षिणा के लिए दौड़ लगाने वाले भिखमंगों को मान मर्यादा का ज्ञान कैसे होगा? पाद टिप्पणी में है, पलनाडु आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले का पश्चिमी प्रांत, जहाँ के लोग शूर और साहसी प्रसिद्ध हैं। यहाँ धर्माराव का संकेत उनके अनाड़ीपन की ओर है। यह फटकार सुनकर अरुंधति समझ गई कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी है, तथापि माता पिता की भर्त्सना उसे बहुत बुरी लगी, क्रोध आया। धर्माराव आगे कहने लगा, मेरी बातों पर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा होगा। आज तक तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे समक्ष मुझे हजारों गालियाँ दी होंगी, पर तुम्हें उन पर कभी क्रोध नहीं आया होगा। मैंने 2 बातें उनके बारे में क्या कहीं, तुम बिगड़ गईं। स्त्री के लिए पति शाश्वत होता है या माता पिता, तुम्हारे और मेरे जीवन एक सूत्र में बंध गया है, सुख दुख में हमारा साझा है। अब तुम्हारे माता पिता का तुमसे क्या संबंध रहा? संसार में क्या कोई स्त्री सदा के लिए मायके में रहती है? जरा देखो तो। फिर वह मीठे स्वर में अनुनय करने लगा, मैंने तुम्हें अपने प्राणों से अधिक माना है, मेरी बात न मानोगी? खैर, अब मेरे जीने का प्रयोजन ही क्या है? पिताजी ने सारी जायदाद ध्वस्त कर दी। जो जमींदार मुझसे प्रेम करते थे वे चल बसे। जिस पत्नी के आगमन की आशा थी वह मुख मोड़ गई। छिह, अब मैं क्यों जीवित रहूं? यह सुनकर अरुंधति सोचने लगी, पति का मुझ पर सचमुच इतना प्रेम है क्या? मेरे माता पिता उन्हें बुरा क्यों कहते थे, फिर भी उसका हठीलापन बना रहा। धर्माराव बोला, अब तुम्हें आना ही होगा, आ जाओ। खैर, यूं ही आकर सेज पर लेट जाओ। धर्माराव ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, अरुंधति ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उस खींचा तानी में वह गिर पड़ी, और फिर वह न स्वयं उठी और न धर्माराव ने ही उसे उठाया। वह जाकर सेज पर लेट गया। भोर हो रही थी, सोचते सोचते धर्माराव की आंख लग गई। अरुंधति जमीन पर लेटी थी, उसकी आंख लग ही रही थी कि माँ ने द्वार खटखटाया। अरुंधति द्वार खोलकर बाहर चली गई। दूसरे दिन दोपहर को पड़ोस की एक बुढ़िया उसके घर आई। नागम्मा ने उस बुढ़िया से अपनी लड़की के ससुराल वालों की खूब निंदा की। कहने लगी, खैर मुझे क्या लेना देना है, वे सब एक हैं, अकेली मैं ही पराई हूँ। कल मैंने कहा साड़ी अच्छी नहीं है, इस पर समधिन मुझे काट खाने को दौड़ पाई। इधर सावित्री देवी को खबर मिली कि लड़की के आंचल में कल रात कुछ नहीं बांधा गया। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, धर्माराव मैंने अशर्फी बांधी तो थी, पता नहीं कहीं गिर गई या वे लोग ही उसे हड़प कर झूठ बोल रहे हैं। सावित्री देवी ने उसकी बात को सच समझ लिया। फिर क्या था, इधर से कहा गया कि आंचल में अशर्फी सचमुच बांधी गई थी, उधर से जवाब मिला नहीं बांधी गई थी। इस बात को लेकर एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। वह तो खैर हुई कि थोड़े में ही इसका निपटारा हो गया। सूर्यनारायण ने धर्माराव से पूछा, तुमने सचमुच अशर्फी बांधी थी? धर्माराव हाँ कहकर भी चुप हो गया। सूर्यनारायण का विश्वास था कि धर्माराव झूठ नहीं बोलता, अतएव उसने अपनी सास का पक्ष लिया। यह देखकर नागम्मा कुछ सहम गई और बोली, हो सकता है भैया अशर्फी कहीं गिर गई हो। सारा घर छान मारा गया, पर अशर्फी नहीं मिली। उस रात को फिर से सेज लगाई गई। धर्माराव टस से मस न हुआ। अंत में अरुंधति ने ही पति के हाथों को चंदन लगाया, पर गिल्लौरी का खेल जहां का तहां धरा रह गया। फिर भी स्त्रियां अपनी हंसी खुशी में मस्त थीं। थोड़ी देर बाद सब लोग चले गए। धर्माराव लेटा रहा, अरुंधति बड़ी देर तक खड़ी रोती रही। उसे सांत्वना देने वाला कोई न था। वह द्वार खोलकर बाहर जाना चाहती थी, परंतु वह बाहर से बंद था। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका स्थान कमरे के भीतर है, बाहर नहीं। अरुंधति फर्श पर सोना चाहती थी, एक बार धर्माराव की आंख खुली और उसने देखा कि अरुंधति ज्यों की त्यों खड़ी है। धर्माराव फिर सो गया। कुछ देर बाद अरुंधति स्वयं जाकर सेज पर पति से अलग लेट गई। सवेरे धर्माराव की नींद खुली तो उसने अरुंधति को सेज पर पाया। उसके मन में कामदेव ने खलबली मचाई, पर उसने प्रयत्नपूर्वक आत्मसंयम किया और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। लेकिन उसे नींद नहीं आई। इतने में सवेरा हुआ। अरुंधति की माँ ने आकर द्वार खटखटाया। अरुंधति जागी और द्वार खोलकर बाहर चली गई। उसके जाने के बाद धर्माराव को नींद आई। सारा दिन अरुंधति खिसियानी सी रही। माँ ने उससे बहुत पूछा, पर उसने कोई उत्तर न दिया। पड़ोसनी आकर पूछने लगी, बेटी क्यों ऐसी अनमनी बैठी हो? पतिदेव ने तुम्हें मारा, फटकारा, तुमसे बात नहीं की? अरुंधति चुप रही। पड़ोसिन कहने लगी, बेटी पति को गुस्सा भी आ जाए तो हमें सहन करना चाहिए। पति से अपनी बात मनवाना पत्नी का ही काम है। उसकी अनुनय करो। वह तुमसे न बोले तो तुम ही बोलो। बिटिया, पत्नी के लिए पति के बाद ही सब कुछ है। सावित्री देवी उधर से गुजर रही थी। बोली, समझाओ बहन, समझाओ। माँ ने नहीं समझाया, न सही, तुम तो समझाओ। बच्चों का क्या है, माँ बाप जो कहते हैं वही उनके लिए सत्य है। पता नहीं पति के बारे में उन्होंने लड़कियों का क्या क्या बताया होगा। इस लड़की ने शायद पति की बात नहीं मानी, नहीं तो वह क्यों नाराज होता। मेरा लड़का गऊ जैसा सीधा है। अरुंधति को एक एक बात नई लगने लगी। एक एक कथन में कोई नया भाव झलकने लगा। उसी गांव में एक धनवान ब्राह्मण रहता था। उसने जवानी में एक सुशिक्षित युवती से प्रेम करके उससे ब्याह किया था। वह युवती बहुत सुंदर थी। अब उसकी आयु 40 बरस की थी। लोग उस दंपत्ति की तुलना सीता और राम से करते थे। कहा जाता है कि वह महिला काम शास्त्र का पूरा पूरा अध्ययन कर चुकी थी। उसका नाम था राज्यलक्ष्मी। अरुंधति की केश सज्जा के लिए राज्यलक्ष्मी को बुलाया गया। उन दिनों सामाजिक रस्म रिवाज के मामलों में निर्धनों से खींचे खींचे रहने और मिथ्या गौरव जताने की प्रवृत्ति धनवानों में न थी। राज्यलक्ष्मी अरुंधति की वेणी संवारने आई। केवड़े के फूल लाए गए। केश सज्जा के समय राज्यलक्ष्मी ने वहां किसी और को न रहने दिया। वह बाहर से जितनी गंभीर दिखती, एकांत में उतनी ही खुल जाती। अरुंधति से बोली, क्यों लड़की, बाल बनाऊं? अरुंधति कुछ न बोली। राज्यलक्ष्मी कहने लगी, क्यों इतना लजाती है री? थोड़ी देर मुझे अपना पति समझ ले, जो चाहे कर ले। अरुंधति ने एक बार उसकी ओर देखकर पलकें झुका ली। राज्यलक्ष्मी आगे कहने लगी, पगली लड़की, पति क्या क्या है? वह तो तुम जो कहोगी वही मान लेगा। हाँ, कहने की चतुराई चाहिए। आ, तेरी चोटी बना दूं। फिर बाल संवारती हुई वह पूछने लगी, अरुंधति सच बचा, इस वेणी से पति को क्या करेगी? अरुंधति की समझ में न आया। राज्यलक्ष्मी ने उसकी ठुड्डी पकड़कर मुख अपनी ओर फेरा और उसके गालों पर चपत लगाई। फिर शरारत भरे स्वर से हंस पड़ी। अरुंधति के मन में एक विचित्र तथा अपूर्व अनुभूति होने लगी, पर समझ में ठीक ठीक कुछ न आता। वह पूछना चाहती थी कि वेणी से पति को क्या किया जाता है, पर लज्जा के कारण पूछ न पाई। राज्यलक्ष्मी कहने लगी, अय लड़की, कहीं इस वेणी से पति को मारोगी तो नहीं? छोकरे का गोरा गोरा शरीर मुरझा जाएगा। अरुंधति को एकदम हंसी आ गई। राज्यलक्ष्मी तुरंत बोली, ओहो, तुम तो बड़ी चतुर हो, मैं समझती थी कि भोली है। यह कहकर उसने अरुंधति की पीठ पर हल्की सी चपत लगाई। राज्यलक्ष्मी ने केवल उसके बाल ही नहीं संवारे, दो चार बातें ही नहीं की, बल्कि और भी न जाने क्या क्या किया कि जब वह उठी तो अरुंधति का सारा शरीर पुलकों से ओतप्रोत था। उसकी देह ने मानो त्रपा का अवगुंठन ओढ़ लिया था। द्वादशी की चांदनी की तरंगें उभर उभर कर आ रही थीं, मानो ढाके की मलमल के हजारों थानों के ढेर लग रहे हों। आंगन में अरुंधति चांदनी की देवी की भांति इधर उधर घूम रही थी। उसने एक महीन और सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। वेणी में केवड़े के फूल चमक रहे थे, मानो काली वेणी में चांदनी के लिए स्थान बना रहे हों। अरुंधति श्वेत द्वीप से आई हुई अप्सरा सी लगती थी। धर्माराव ने किसी काम से बाहर आते हुए अरुंधति की ओर देखा। उसका सिर चकरा गया। उसी के लिए भरा था वह सोने का मधु कलश, परंतु उसके होठों को उस मधु स्पर्श का परिचय अभी तक न हो पाया था। रात को फिर सेज सजाई गई। राज्यलक्ष्मी भी आ पहुंची। धर्माराव उसे नहीं जानता था, पर वह धर्माराव को जानती थी। गीत गाए गए, पर आज स्त्रियों ने यह सारा समारोह थोड़े में ही समाप्त कर दिया। राज्यलक्ष्मी ने अरुंधति की केश सज्जा के करते समय एक फुलझड़ी तैयार रखी थी। अब वह उसे ले आई और अरुंधति के हाथ में देकर बोली, पहले तो उन पर फेंक। परंतु धर्माराव ने फुलझड़ी लेने को हाथ नहीं बढ़ाया। राज्यलक्ष्मी उससे बोली, हाथ बढ़ाओ जी। राज्यलक्ष्मी का रानी जैसा मुखमंडल, आकर्णांत नयन, चेहरे पर विवेक सूचक भाव, कंठस्वर में अधिकार और मृदुता का समिश्रण, इन सबके आगे विवश होकर धर्माराव ने हाथ बढ़ाया। अरुंधति ने फुलझड़ी फेंकी। फुलझड़ी ठीक पति के हाथ में आ गई। धर्माराव ने नहीं सोचा था कि अरुंधति फुलझड़ी फेंकेगी। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, अचेतन सा हो गया। स्त्रियां कहने लगीं, यह क्या, वापस क्यों नहीं फेंकते? क्या आज इन महाशय के रूठने की बारी है? ये बातें सुनकर धर्माराव को होश आया। उसने फुलझड़ी वापस फेंकी। फिर तो खेल ठीक ठीक चल पड़ा। चंदन का लेप लगवाया गया। संभव है अरुंधति ने पति के गले में चंदन लगाते लगाते थोड़ा मुँह पर भी लगा डाला हो। स्त्रियां कहने लगी, यह सब परसों ही करती तो कितना अच्छा होता। जाते जाते स्त्रियों ने राज्य लक्ष्मी से कहा, यह सब तुम्हारी करामात है बहन, तुमने तो सचमुच जादू कर लिया है। अरुंधति फिर द्वार के पास जा खड़ी हुई। उसके खड़े रहने की अदा में धर्माराव को भास हुआ कि वह उसकी ओर खींची चली आ रही है। समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर के गर्भ तक गई तरंगों से जिस प्रकार चंद्रमा का आविर्भाव हुआ था, ठीक उसी प्रकार धर्माराव के हृदय में एक अपूर्व आनंद रेखा का आविर्भाव हुआ। वह अरुंधति की ओर एकटक देख रहा था। अरुंधति ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। आँखों की वह अपूर्व भाषा व्याकरण दोष नहीं जानती थी। वह भाषा दोनों अपंडितों की समझ में आ गई और पति का बाहें पसार कर आगे बढ़ना और पत्नी का उन बाहों में समा जाना एक ही क्षण में संपन्न हुआ। कुछ प्रश्न, कुछ उत्तर, कुछ रहस्य कथन, कुछ कानाफूसी, कुछ एक दूसरे की प्रशंसा, यह सब लगातार चलता रहा। बातें करते करते धर्माराव ने कहा, वह सुनो मुर्गे की बांग। अरुंधति हंस पड़ी। धर्माराव के होठ उसके विशाल नयनों पर, पलकों पर, अधरों पर, वक्ष पर, चरणों पर, ठुड्डी पर और गले पर अंकित हुए। अरुंधति को ऐसा लगा मानो उसके वक्षस्थल में संचित रक्तकूपों में एताम लगाकर धर्माराव उसका लहू ऊपर सेंध रहा है। पाद टिप्पणी में है, एताम कम गहराई वाले कुएं से सिंचाई का पानी निकालने के लिए लगाया हुआ लंबा बांस जिसके सिरे में डोल बंधा रहता है और जिसे स्वयं किसान अपने हाथ पांव द्वारा चलाते हैं। सेंध कुएं से पानी निकालने को सेंधना कहते हैं। रात्रि रेवम व्यरंसित। दूसरे दिन सवेरे उसके बिछोड़ने पर धर्माराव सोचने लगा कि पिछली रात अरुंधति से एक बात पूछना ही भूल गया। वह पूछना चाहता था कि उसे हुक्म देने वाली वह स्त्री, उसे मंत्रमुग्ध करने वाली वह देवी कौन है। उधर अरुंधति सोच रही थी कि वह अपनी वेणी से पति को मारना भूल ही गई। मारना तो दूर, स्पर्श तक न किया। यह स्मरण करते ही वह लज आ गई। सवेरे बाजार में अपने एक पुराने सहपाठी से धर्माराव की अचानक भेंट हुई। वह सहपाठी धर्माराव की ओर देखकर कहने लगा, क्यों भैया, यही तुम्हारा गांव है? बताओ तो क्या बात है, ऐसे फूले फूले दिख रहे हो, लगता है समुद्र तट का सारा प्रांत अकेले जीत आए हो। उसी दिन शाम को सब लोग सुबन्ना पेट लौट आए। बहुरानी को देखने के लिए पड़ोसियों का तांता बन गया। रंगा जम्मा आई और बहू को अपनी गोद में बिठाकर कहने लगी, बेटी है तो तू बड़ी सुंदर, पर हमारे लड़के की बराबरी नहीं कर सकेगी। मेरा लड़का रतन है, रतन सुंदरता का क्या, देखनी हो तो हमारे लाल की बुद्धि देखो, मूर्तिमान धर्म है। उसकी बाँह पकड़कर तुम सचमुच भाग्यशाली बनी हो। अरुंधति मन में सोचने लगी, ओहो तो यह है रहस्य, सभी को अपने अपने लोग अच्छे लगते हैं। मंगा उनके घर कभी नहीं आती थी, पर आज आ पहुंची। उसे देखते ही सावित्री देवी ने बड़े प्रेम से कहा, आरी बहन आ। फिर उसे बहू दिखाई। मंगा अत्यंत प्रसन्न हुई और कहने लगी, तुम कुछ भी कहो बहन, हमारे लाल की योग्य यह लड़की नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी आँखें हैं इसकी, नाक सुंदर है, घर की योग्य बहू है। फिर वह सहसा बोल उठी, वैसे मुझसे बदसूरत नहीं है न। इतने में रत्नगिरी भी आ गई। बहू को देखकर कहने लगी, बहुरानी तुम्हारा नाम अरुंधति है ना, सो इस नाम के योग्य तुम्हारा व्यवहार भी होना चाहिए। हमारे लाल के घर को चार चांद लगाना, हमारा लाल देवता स्वरूप है, कभी भी बेकार के झमेलों में नहीं पड़ता, अपने रास्ते जाता है, अपने रास्ते आता है, तुम उसका नाम निभाना। अरुंधति सोच रही थी, यहाँ तो कोई आता है मेरे पति की प्रशंसा करता है, क्या मेरे मायके और ससुराल में इतना अंतर है। सांझ हो चली थी। अरुंधति ने देखा आकाश में दो पंछी मिलजुल कर उड़ते हुए अपने नीड़ की ओर चले जा रहे हैं। पति और पत्नी एक पहर रात को फिर मिले। अरुंधति एक शिशु की भांति पति के वक्षस्थल से चिपट गई। धर्माराव को लगा मानो उसका सारा प्रेम उसके होठों तथा हाथों में केंद्रित हो गया। उसे लगा कि उसके घर में त्रिकोटी देवता आ बसे। अविरल कपोलों तथा वक्षस्थल सहित उन दोनों का जलपन क्रम अक्रम सही प्रकार से लगातार चल पड़ा। धर्माराव तुम्हें एक रहस्य बताऊं, उस दिन मैंने तुम्हारे आंचल में कुछ नहीं बांधा था, यूं ही झूठ बोल गया। अरुंधति, वाह लोग तो आपको धर्म देवता कहते हैं, क्या झूठ और धर्म एक ही चीज के नाम हैं? शायद आप जो भी कहेंगे उसी को लोग धर्म मान लेंगे। फिर वह लजा गई और पति के कंठ के नीचे अपना मस्तक टिका दिया। धर्मा राव ने गुदगुदा कर उसे हंसाया। उसने धर्मा राव को दूर ढकेल दिया। फिर वह बोली, बताइए वह रहस्य। धर्मा राव ने एक अशर्फी उसके पल्लू में बांध दी। अरुंधति ने पल्लू की गांठ खोलकर अशर्फी निकाली और पति की धोती के कोने में बांध दी। धर्मा राव ने अपने अनुनय वचनों से अरुंधति में लज्जा, पुलकांकुर तथा मंद हास का उदय कराते हुए फिर से अशर्फी लेने को कहा। अरुंधति बोली, मैं क्या करूँगी यह अशर्फी लेकर। धर्मा राव बोला, चना चबेना खरीद लेना। अरुंधति, हाँ यह उसी काम की है, इस अशर्फी से एक कंगन का जोड़ा भी नहीं आएगा। धर्मा राव, कंगन तुम्हारे पिताजी ने नहीं बनवाए? अरुंधति, मायके वाले कहीं जेवर बनवाते हैं क्या? उनके एक लड़का और लड़की है ब्याह के लिए। धर्माराव, किसने कहा कि वे अपने पैसों से जेवर बनवाएं? अरुंधति, तो फिर क्या कहीं से चोरी करके बनवाते? धर्माराव, यह नहीं कहा मैंने, बस इतना ही कहा कि औरों का माल चुराना नहीं चाहिए। इस वाक्य का अर्थ अरुंधति की समझ में नहीं आया। वह उठी और साड़ी संवार कर पास की मेज से पान निकालती हुई बीड़े लगाने लगी। धर्माराव ने पानी मांगा पर अरुंधति ने नहीं दिया। फिर धर्माराव बोला, थोड़ा पानी ला दोगी तो घिस न जाओगी, मुझे कुल्ला करना है। तब भी अरुंधति हिली नहीं। अंत में धर्माराव स्वयं उठा और चांदी की कटोरी में रखे हुए गुलाब के पानी को अपने मुंह में उड़ेलने लगा। अरुंधति बोली, वह गुलाब का पानी है। धर्माराव ने सहसा सारा पानी अरुंधति पर थूक दिया और जोर जोर से हंसने लगा। अरुंधति अपने पल्लू से मुख और हाथ पोंछती हुई बोली, तब तो मैं गाँव लौट जाऊँगी। धर्माराव, कौन गांव है तुम्हारा? अरुंधति कहना तो रंगापुर चाहती थी पर उसके मुंह से निकला सुबन्नापेठ। धर्माराव, सुबन्नापेठ में तुम्हारा घर कहाँ है? पीपल के वृक्ष के सामने। अरुंधति को क्रोध भी आया और हंसी भी। धर्माराव ने उसे अपने पास घसीट कर कहा, तुम्हारे ब्याह के समय मेरे पिताजी ने गहनों के लिए 1,000 रुपये दिए थे। तुम उस समय बहुत छोटी थी, बालिश भर की भी नहीं थी, तब तुम्हारे लिए गहने बनवाना संभव न था। वे रुपये तुम्हारे पिताजी आज तक ब्याज पर चला रहे हैं। तुम्हारे मायके में कभी इस बात की चर्चा तक नहीं हुई। मैं मांगने जाऊंगा तो तुम्हारे पिताजी मुझे काट खाने को दौड़ेंगे। सो तुम स्वयं मायके चली जाओ और अपने पिताजी से रुपये मांगकर गहने बनवा लो। यह कहकर उसने देवदासी की दी हुई अंगूठी अरुंधति की उंगली में पहना दी। अरुंधति, यह अंगूठी आपने बनवाई है? धर्माराव, मेरी बहन ने तुम्हें दी है। अरुंधति, कौन है आपकी बहन? धर्माराव, अभी अभी तुम्हें देखने रत्नगिरी नाम की महिला आई थी ना, उसकी लड़की है मेरी बहन। अरुंधति, वह वेश्या है ना? धर्माराव, हाँ। अरुंधति, तो फिर मुझे नहीं चाहिए अंगूठी, मैं एक वेश्या के हाथ की अंगूठी पहनूंगी। यह कहकर वह अंगूठी पति को लौटाने लगी। उसने नहीं ली तो अरुंधति ने अंगूठी मेज पर रख दी। धर्माराव ने अंगूठी उठाई और अपनी उंगली में पहनकर चुपचाप सेज पर जा लेटा। अरुंधति ताड़ गई कि पति अप्रसन्न हुए हैं, इसलिए वह सेज पर धर्माराव की गोद में जा बैठी और बोली, फिर से रूठने लगे? परंतु इन बातों से पति प्रसन्न नहीं हुए। तब अरुंधति बोली, क्यों इतने बिगड़ते हैं? लाइयो है अंगूठी। पर पति ने अंगूठी नहीं दी। इस पर अरुंधति ने कुछ छीना झपटी की और अंत में अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन ली। तब भी धर्माराव की अप्रसन्नता यथापूर्व बनी रही। अरुंधति, अब भी नहीं उतरा गुस्सा? हाँ ठीक ही तो है, गाना खत्म होने पर भी थोड़ी देर तक सुर चलता रहता है ना यही बात? अरुंधति ने अपना गाल पति के गाल से सटा दिया। धर्माराव के मन में वर्षा की नदी के समान उद्वेग और शरद काल की नदी के समान स्निग्धता उभर आई। फिर उसमें पूर आ गया। धर्माराव, तुमने संगीत सीखा है? अरुंधति, मुझे नहीं आता, राज्य लक्ष्मी से मैं गाना सुना करती थी, वह बहुत अच्छा गाती है। धर्माराव, वह कौन है? अरुंधति, कौन है इसका उपकार इतने में ही भूल गए? धर्माराव, इतना बातूनीपन कहाँ सिखाई हो? साथ ही साथ अरुंधति के गाल पर एक तमाचा लगा। तमाचा तेज था, गाल सुर्ख हो गया। धर्माराव ने उसे सहसा गले से लगाकर कहा, भूल से मार लग गई है, खेल में लगी मार केले के बराबर होती है, छू मंतर कर दूं? फिर कुछ फूंका फूकी करके वह अरुंधति के गाल पर हाथ फेरता हुआ कहने लगा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे गाल पर कुमकुम का लेप लगा है। अरुंधति ने पहले तो मुंह बनाया पर अंत में पति के आलिंगन में समा गई। फिर दोनों शय्यागत हो गए। अरुंधति, तो क्या वेश्या जाति के लोग अच्छे होते हैं? धर्माराव, वेश्या और देवदासी में बहुत बड़ा अंतर होता है। देवदासी भगवान के समक्ष नाचती और गाती है। जब इस प्रथा की स्त्रियां बिगड़ जाती हैं तब वारंगना बन जाती हैं। मंदिरों में भगवान को भोग चढ़ाने की बात तुमने नहीं सुनी? इसी से देवदासियों का नाम भोगांगना प्रचलित हुआ। कालांतर में कई और शब्दों की भांति यह शब्द भी बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। संसार में काम और क्रोध आदि प्रबल हुए और भोगांगनाएं कुलटा बन गईं। धनवानों ने उन्हें वासना के नरक में उतारा। सच पूछो तो उन्हें केवल भगवान की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था, पाप के लिए नहीं। अरुंधति, ब्याह के बिना उनका निवाह कैसे होता है? धर्माराव, कल यदि राज्य लक्ष्मी तुम्हारी वीणी न बनाती तो तुम्हारा निवाह कैसे होता? यह सुनकर अरुंधति लजा गई। धर्माराव कहने लगा, क्या देश में सभी लोगों के ब्याह होते हैं? हमारे देश में अविवाहित पुरुष हजारों की संख्या में हैं, उनका निवाह कैसे होता है? मान लो किसी स्त्री का पति बचपन में ही चल बसा, उस स्त्री का जीवन निर्वाह कैसे होता है? अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करने में जो अपार संतोष है, वह इस दुखभरी गृहस्थी में कहाँ? मेरी आयु 20 वर्ष की हो चुकी है। जब से मैंने होश संभाला, सुख का मुझे लेश भी नहीं मिला। आज तक केवल 2 रातें सुख से बीती हैं और 2 रातें यों ही बीत गईं। जैसे कोई दुष्ट मालिक अपने सेवक के वेतन में कटौतियाँ करता है, उसी प्रकार भगवान भी हमारे सुख में कटौती करते हैं। अरुंधति ने धर्माराव में एक नई झलक देखी। उसे लगा कि इस व्यक्ति में एक गुप्त अग्नि सुलग रही है। वह बोल रहा था पर अरुंधति उसकी ओर देख न सकी। उसे लगा कि अभी अभी वह उसके बहुत पास थी पर कुछ ही क्षणों में बहुत दूर पहुंच गई। उसकी इच्छा हुई कि अपना हाथ पति के कंधों पर टिका दे पर साहस न कर सकी। अरुंधति, उसका नाम क्या है? धर्माराव, लोग उसे देवदासी कहते हैं पर मैं उसे गिरिका कहता हूँ। अरुंधति, वह हमारे घर आएगी? धर्माराव, साधारणतया प्रतिदिन आती है, पता नहीं आज क्यों नहीं आई। तुम पर उसे बड़ा अभिमान है। अरुंधति, वह धंधा करेगी या विवाह कर लेगी? धर्माराव, उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। बेचारी वेणुगोपाल स्वामी को अपना सर्वस्व अर्पण करने जा रही है। भगवान ने उसे स्वीकार लिया है। पतित कुल के उद्धार के लिए उसने यह अवतार धारण किया है। भोर होने आई। पति पत्नी की बातें यहीं रुक गईं। दूसरे दिन रंगा जम्मा ने 10 रुपये की एक साड़ी मंगाई और हल्दी, कुमकुम, मिश्री तथा नारियल के साथ अरुंधति को भेंट की। सावित्री देवी ने मना किया पर रंगा जम्मा तुनक कर बोली, ऐसा न कहो, मैं अपनी खुशी के लिए बहू को कुछ देना चाहती हूँ, तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। फिर अरुंधति से कहा, बहू यह साड़ी पहन लो, देख कर चली जाऊँगी। अरुंधति ने साड़ी पहनी। वह काले रंग की जरी की साड़ी थी। गोरी गोरी और दुबली पतली अरुंधति उस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। रंगा जम्मा बोली, देखो कल सवेरे तक इस साड़ी को खोलना नहीं, इसमें तुम बड़ी ही सुंदर लग रही हो। इस बात की कोई चिंता न करो कि साड़ी अस्त व्यस्त हो जाएगी। दिन भर कड़ी धूप पड़ती रही, साड़ी भी कड़ी लग रही थी। रंगा जम्मा यद्यपि बूढ़ी हो चली थी लेकिन अब भी सुगंध द्रव्यों का उपयोग किया करती थी। उसे सुगंध द्रव्यों की आदत सी पड़ गई थी। उसने अपने यहाँ से बढ़िया कस्तूरी एक डिबिया में भरकर अरुंधति को भेज दी। अरुंधति ने उसे अपनी हथेली पर लगाकर साड़ी पर मल लिया। साड़ी सहसा सुगंध से महक उठी। जहाँ तहाँ अरुंधति जाती वहाँ तक सुगंध भी फैलती। ऐसा लगा जैसे अरुंधति स्वयं कस्तूरी लिए विचरने वाली कोई हरिणी हो। उसे देखकर एक बुढ़िया कहने लगी, बेटी यह साड़ी बड़ी सुंदर है, बचपन में रंगा जम्मा ठीक तुम जैसी दिखती थी। संध्या समय अस्त होते सूर्य के प्रकाश में एक अनोखी लालिमा आ गई, मानो काल पुरुष रूपी परशुराम ने सूर्य बिंब रूपी परशु से शत्रु संहार करके पश्चिम दिशा रूपी तलैया का निर्माण किया हो और अपने परशु को उस तलैया में छोड़ गया हो और तलैया की कांति देश में चहुओर फैल गई हो। पशुओं को दिन भर चराकर चरवाहे लौट रहे थे। सुबन्ना पेट के बाजारों में जगी हुई धूल जानवरों के खुरों के बीच से उड़ उड़कर धुएं जैसी लग रही थी। पशुगण सिर हिलाते हुए एक अनूठे डील डॉल के साथ चले आ रहे थे। जिन गायों के बछड़े घरों में थे वे घर की ओर बड़े वेग से चली आ रही थीं और रंभा रंभा कर बछड़ों को अपने आगमन की सूचना दे रही थीं। गुंडेरू नदी के तट पर घुटनों तक बढ़ी हुई घनी और हरी हरी घास पेट भर भर चर कर गो माताएं बड़ी देर तक वृक्षों के नीचे जुगाली कर चुकी थीं और थनों में भरे नव क्षीर के भाव से और गमन वेग में पिछले पाँव के अगले पाँव की बराबरी न कर सकने के कारण कुछ लड़खड़ाती हुई बछड़ों को देख पाने की प्रबल उत्कंठा में दौड़ लगा रही थी। जिसके मन में यौवन का नया अंकुर उपजा हो और कामुकता की नई लहर उभरी हो, ऐसे युवजनों का प्रेम विशाल जलप्रपात की भांति एक बारगी उमड़ पड़ा। उस जलप्रपात को अनुभव रूपी बांध से रोकना और इस प्रकार बने जलाशय से सुव्यवस्थित नहरों के द्वारा लेकर उस जल का उपयोग करना संभव न था। इसी प्रकार लालिमापूर्ण सूर्य रश्मि देखते देखते अंधेरे में बदल गई, परंतु एक कला लिए हुए चंद्रमा उदित हुआ और उसके फूंक मारते ही अंधेरा ऐसा लुप्त हो गया जैसे जन्म लेते ही मरने वाला शिशु। इसके बावजूद चांदनी निकली तो उस पर अंधेरे का ही आतंक दिख पड़ा। वर्षा ऋतु का मटियाला पानी, खेतों की हरियाली, गिल्ली मिट्टी का रौंदन, पशुओं के खुरों के निशान लिए हुए सूखी काली पगडंडियाँ, फूलों से वंचित होकर जीभें पसारे हुए केवड़े के पेड़, अरुंधति की काली मनोरम साड़ी, इन सभी ने अंधेरे को बढ़ावा दिया। रात को पति पत्नी मिले, उस समय घर के भीतर से आने वाली बर्तन भाड़ों की खनखनाहट कामदेव के धनुष की टंकार सी लगने लगी। दिन भर धर्मराव अरुंधति को नहीं देख पाया था। रात के समय काली साड़ी में शांबरी विद्या सी लगने वाली अपनी पत्नी को अमंत्र मुग्ध सा देखता ही रह गया। अरुंधति पान के बीड़े लगा रही थी। मृगमद की सुगंध अनेकानेक लहरों में कमरे में भर में फैल रही थी, जो पिछली रात के सारे सुगंधित द्रव्यों को मानो निर्गंध बनाकर धर्मराव की नासिका में जा घुसी। उस सुगंध से मस्त होकर धर्मराव अरुंधति की ओर इस प्रकार झूमता चला मानो चंदन वृक्ष को छूकर मंद गति से चलने वाले दक्षिण पवन की लहरों के स्पर्श से प्रेरित काले नाग अपने निद्रालस वलयाकार शरीरों को सीधा करके धीरे धीरे चंदन वृक्ष की ओर बढ़ रहे हों। पास आते ही अरुंधति ने पति के मुंह में सुपारी दी। सुपारी के साथ साथ धर्माराव ने अरुंधति की उंगली भी कतर दी। अरुंधति, उंगली कतरने से दर्द नहीं होगा? धर्माराव, मैंने कहाँ कतरा, उन गिलौरियों को तुमने तोते की आकृति दी है, शायद उसी तोते ने तुम्हारी उंगली कतरी होगी। अरुंधति पति के मुंह में गिल्लौरी देने लगी, पर इस बार बड़ी सावधानी से। धर्माराव मेज के पास खड़ा पान चबा रहा था। धर्माराव, यह कस्तूरी कहाँ से आई, यह साड़ी किसने दी? अरुंधति, कोई रंगा जम्मा नाम की देवी आई थी, उन्होंने दी है। वे कौन हैं? धर्माराव, वे क्षत्रिय कुल की हैं। अरुंधति, जानते हैं आप पर उन्हें कितना अभिमान है, कहती थी कि आप धर्म के अवतार हैं, देवता स्वरूप हैं। माँ को बेटे से प्रेम नहीं होता, धर्माराव ने कहा। अरुंधति, वे आपकी माँ हैं, इस गांव की रानी तो नहीं? धर्माराव, नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने उनसे ही विवाह किया था। यह सुनकर अरुंधति हंस पड़ी। धर्माराव ने पूछा, क्यों हंसती हो? अरुंधति कहने लगी, ससुर जी, इतना कहकर वह रुक गई। धर्माराव ने उसका आशय ताड़ लिया, बोला, मेरे पिताजी को तुमने क्या रखा है, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उनकी महत्ता बुद्धिहीनों की समझ में कैसे आएगी। यह कहकर उसने पान थूक दिया और जाकर सो रहा। बेचारी अनजान अरुंधति अवाक रह गई, सोचने लगी, ये महाशय हर छोटी सी बात पर तुनक जाते हैं, कल देवदासी की बात पर बिगड़े, आज अपने पिता की बात पर, इस प्रकार पग पग पर झल्ला उठेंगे तो निवाह कैसे होगा। अरुंधति वहीं खड़ी खड़ी सोचने लगी, मेरे पति एक विचित्र व्यक्ति हैं, वैसे उनका मन प्रेम भरा है, पर रह रहकर प्रेम को मिटा भी सकता है, अत्यंत कोमल हैं, पर साथ ही साथ अत्यंत कठोर भी। ऐसे व्यक्ति से बोलते समय सही बातों में परिहास ठीक नहीं। पिता, देवता आदि विषय उनकी दृष्टि में पवित्र हैं, उनके संबंध में ठट्टा उन्हें पसंद नहीं, वे चाहते हैं कि हर बात में प्रगाढ़ सहृदयता हो, गंभीरता हो, हल्कापन न हो, उनके लिए मैं ही स्वर्ग हूँ, किंतु आवश्यकता पड़ने पर वे अपने पाँव के अंगूठे से साक्षात स्वर्ग को भी ठुकरा सकते हैं, मुझ ही को उनके वश में हो जाना चाहिए, वे मुझे प्रसन्न करने के लिए उंगली भी नहीं हिलाना चाहते। हाँ, इन बातों को छोड़कर श्रृंगार के विषय में मेरा ही सर्वोपरि अधिकार है, श्रृंगार के साम्राज्य की मैं ही साम्राज्ञी हूँ। इसी प्रकार सोचती हुई वह जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। बीड़े बनाने के लिए अब पान नहीं बचे थे, अभी अभी बनाए हुए बीड़ों को अपने आंचल से पोंछकर उसने मेज पर रख दिया। इसके उपरांत एक एक सुपारी को चंदन में डुबोना, बाहर निकालना, आंचल से पोंछना और मेज पर रख देना, यही काम वह बड़ी लगन से करने लगी। एक बार अरुंधति ने यों ही सिर उठाकर देखा, ऊपर द्वार के पास एक सांप दिख पड़ा। देखते ही अरुंधति बहुत घबरा गई, एक ही छलांग में पति के पास जा पहुंची और उसे जगाकर सांप सांप चिल्लाने लगी। धर्माराव उठ बैठा, देखता क्या है कि हजार फणों के साथ सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी विराजमान हैं। धर्माराव ने मन में स्वामी का चिंतन किया, स्वामी हजार फणों पर पृथ्वी को उठाने वाले, दो फणों से पति पत्नी का पालन करने वाले, एक फण पसार कर शस्यों की रक्षा करने वाले, त्रिमूर्तियों की आकृति धरने वाले, जिह्वा पर त्रिशूल और फणाग्रों पर शंख चक्र लिए हुए धर्ममय तन तथा करुणामय अंतरंग वाले सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी, मुझे मेरे पूर्वजों की ही भांति अपनी परंपरा से दूर न भटकने दो, मुझ पर सदा प्रसन्न रहो, मेरी सर्वथा रक्षा करो। स्वामी देखते देखते आंखों से ओझल हो गए। अरुंधति दोनों बाहों से पति से लिपट गई। धर्माराव बोला, क्यों घबराती हो, वह कोई सांप नहीं था, सांप होता तो उसके हजार फण क्यों होते। अरुंधति, तो अभी अभी जो सांप सा हमें दिख पड़ा था वह कौन था? धर्माराव, वे थे हमारे गृह देवता, इस गांव के प्रभु, हमारे वंश के आश्रय दाता, सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी। अरुंधति, इसीलिए हमारे प्रणाम करते ही अदृश्य हो गए। धर्माराव, वे प्रभु बड़े दीन दयाल हैं, उनकी एक टांग टूटी है, तिस पर ही मुझे छोड़ना नहीं चाहते। अरुंधति ने पति की ओर देखा, वह डबडबाई आँखों से उसी स्थान पर दृष्टि केंद्रित किए था जहाँ स्वामी के दर्शन हुए थे। उस पर एक प्रकार का आवेश छा गया था। अरुंधति घबरा गई, उस अनजान को कुछ न सूझा और वह सहसा चीख उठी। धर्माराव की समाधि भंग हुई, उसने अपनी भयभीत पत्नी को समझाकर सांत्वना दी, धीरज दिया। धर्माराव, आज तक मुझे भी स्वामी के दर्शन नहीं हुए थे, यह पहली बार है। आज तक स्वामी मेरे मन में ही बसते थे, फिर दर्शन की क्या आवश्यकता थी? आज तक दर्शन का कोई अवसर ही नहीं आया था। अरुंधति, फिर आज कौन सा अवसर उपस्थित हुआ? धर्माराव, तुमने मेरे पिताजी के बारे में जो कुछ सोचा था, उसके कारण स्वामी को दर्शन देना पड़ा। मेरे पिताजी सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी के उपासक थे। तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो, तुम्हें पिताजी के विषय में अनादर प्रकट नहीं करना चाहिए। शायद उन्हें तुम्हारी बातों से बहुत कष्ट पहुंचा, इसी से अपना सच्चा स्वरूप प्रकट करने आए थे। अब आया तुम्हारी समझ में? मेरे पिताजी के बारे में कुछ न कहना, वे महापुरुष थे, मैं उनका पुत्र हूँ, यह मेरा परम सौभाग्य है। तुम्हारा परम सौभाग्य है कि उस महापुरुष के वंश में ब्याही गई हो। अरुंधति, मेरे माता पिता भी कभी कभी ससुर जी के बारे में टीका टिप्पणी करते थे, तब स्वामी ने उन्हें दर्शन क्यों नहीं दिए? धर्माराव, जग की रीत यही है कि पिता केवल अपनी संतान पर बिगड़ते हैं, उन्हें ठोक पीट कर शिक्षा देते हैं। पर आए बालक भूल कर बैठें तो उन्हें ठोक पीट सकेंगे? यदि पीटें तो माता पिता से झगड़ा नहीं होगा? अरुंधति, क्या स्वामी ने मुझे भी अपनी संतान स्वीकार कर लिया है? धर्माराव, हाँ हाँ, जब तुम मेरी पत्नी हुई तभी से पिताजी की संतान भी हो गई। अरुंधति, एक बुढ़िया कह रही थी कि साड़ी से मैं 16 आने जवान रंगा जम्मा सी लगती हूँ। धर्माराव, अच्छा यह बात है, फिर तो मेरे पिताजी संभवतः अतीत काल की अपनी प्रणय मूर्ति का पुनर्दर्शन करने पधारे होंगे। यह सारा काल्पनिक वृतांत सुनकर अबोध अरुंधति का मुग्ध हृदय कुछ विकल हो उठा, वह पति के पास सो गई। धर्माराव ने उसे धीरे धीरे सेज पर लिटाया और उसके पवित्र स्पंदनमय तथा स्पृहणीय लावण्य का अपनी आँखों से आस्वादन करता हुआ स्वयं भी निद्रालीन हुआ। दूसरे दिन पूर्णिमा थी, सफ़ेद सफ़ेद बादल घिर आए और सूर्यमंडल पर छा गए, हल्की हल्की धूप निकलती मानो धूप में ही चांदनी छिटक रही हो। श्रावण की पूर्णिमा थी, पवित्र दिन था, अतएव रानी नम्मा राव स्नान आदि के उपरांत वेणुगोपाल स्वामी के दर्शन करने निकली। रानी के आने की सूचना पहले ही पुजारियों को दी जा चुकी थी। पुजारियों ने स्वामी की मूर्ति का अलंकरण किया और रानी साहिबा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। रानी साहिबा मंदिर की परिक्रमा करने लगी, देवदासी उनके आगे आगे चल रही थी। रानी को बड़ी इच्छा थी कि देवदासी उनके पास आए। उन्होंने दासियों से कुछ बातें की पर देवदासी ने उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा। रानी के आने से पहले ही देवदासी की एक परिक्रमा पूरी हो चुकी थी, अतएव उसने मुख मंडप में प्रवेश किया और उछलकर घंटा बजाया। वह भीतर जा रही थी कि पुजारी ने टोका, रुक जा रही, रानी साहिबा आ रही हैं। पुजारी अपनी बात अच्छी तरह पूरी भी न कर पाया था कि भीतर धप से किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ आई। पुजारी ने आकर देखा, स्वामी के मस्तक पर मोर पंखों के बीच जड़ा हुआ माणिक के नीचे गिर पड़ा था। उसे हाथ में लेकर पुजारी ने ध्यान से देखा, खैरियत हुई थी कि माणिक्य टूटा नहीं था। उस माणिक्य के पिता अर्थात समुद्र का सौभाग्य था कि वह नहीं टूटा था, नहीं तो समुद्र को एक और माणिक्य का घाटा हो जाता। पुजारी मन ही मन प्रसन्न हुआ। देवदासी ने पूछा, क्या बात है महाराज? पुजारी बोला, कुछ नहीं री, स्वामी का चूड़ा मणि नीचे गिर पड़ा था, मैंने सोचा टूट गया होगा पर टूटा नहीं। यहाँ आकर देख ले, चूड़ा मणि को बलिवेदी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। देवदासी ने भीतर जाकर चूड़ा मणि देखा, उसे ऐसा लगा कि अपनी दुहिता का स्वामी से ब्याह रचाते समय समुद्र ने कन्या का सारा प्रेम निचोड़ कर उस मणि की आकृति में जमाया और उसे भेंट के रूप में स्वामी के अधीन किया है। देवदासी सोच रही थी, एक बार इस चूड़ामणि को अपने हाथ में लेकर वक्षस्थल से लगा पाऊँ तो कितना अच्छा हो। मांगूँ तो क्या यह पुजारी मुझे देगा? नहीं देगा, पर मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। इतने में रानी मंदिर में आ पहुँची, देवदासी ने उन्हें नहीं देखा। वह अपनी ही कल्पनाओं में खोई हुई स्वामी की ओर टकटकी लगाए थी। अपने और स्वामी के बीच उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। ओहो, उस चूड़ामणि के भी क्या भाग्य हैं, उसे स्वामी ने सिर पर पहना है। देवदासी बलिवेदी के पास थी, रानी उसके पीछे खड़ी थी। पुजारी ने चूड़ामणि को यथापुरुष स्वामी के सिर पर पहनाया और देवदासी से कहने लगा, रानी साहिबा पधारी हैं, तू जरा पीछे को हट जा। देवदासी रानी को देखते ही न जाने क्यों लज्जा गई। रानी ने उसे देखकर मंदहास किया, परंतु देवदासी की लज्जा का कारण किसी को समझ में न आया। रानी पास ही खड़ी थी, दोनों के आंचल एक दूसरे को छू रहे थे। रानी, मैं भूल गई, तुम्हारा नाम क्या है? देवदासी, मैं देवदासी हूँ, पर भैया मुझे गिरिका कहते हैं। रानी, मैं भी गिरिका कहूँगी। देवदासी को ज्ञात न था कि रानी की हर बात पर औरों को जी हाँ कहना चाहिए। दर्शन के उपरांत तो दोनों बाहर आईं। रानी ने लाल साड़ी पहन रखी थी, उनकी चोटी बंधी थी, मस्तक पर तिलक न था, गले में दो रत्नहार थे। देवदासी सफ़ेद साड़ी पहने थी, उसकी आयु के अनुपात में साड़ी बड़ी थी। ऐसा लगता था कि वह साड़ी में डूब सी गई है। गीले बालों को सुखाने के लिए उसने उन्हें बिखेर रखा था, केवल बालों के अंत में एक छोटी सी गांठ लगाई थी। गले में सोने का हार था और मस्तक पर लाल लाल कुमकुम का तिलक। वेणुगोपाल स्वामी ने अपने मुखमंडप में घंटा बजाने वाली दोनों महिलाओं को देखा। देवदासी लजा गई, रानी की अपेक्षा वही सुंदर थी। धर्माराव ने कई बार उससे सफ़ेद साड़ी पहनने का अनुरोध किया था। क्या स्वामी को भी सफ़ेद साड़ी प्रिय है? संभवतः सफ़ेद साड़ी देखकर स्वामी को क्षीर सागर का स्मरण हो आता है। कैसा होगा भला क्षीर सागर? क्या मेरी साड़ी जैसा होगा? धुत, यह कैसी उपमा है! स्वामी बिगड़ेंगे कहीं। रानी ने उसे पुकारा, गिरिका। गिरिका चौंक पड़ी। रानी ने कहा, क्यों चौंक पड़ी? क्यों इतनी देर से लजाए जा रही हो? देवदासी धीरे धीरे कुछ कह रही थी। सभी ने कहा, जोर से कहो। गिरिका कहने लगी, तो चरण कमल मम उरोज पर स्थापित कर। वह फिर लजा गई, उसकी आंखें भर आईं, फिर कहने लगी, हर लो बाधा मेरी माधव, वरण करो मेरा। रानी ने मन ही मन अपने जन्म की भर्त्सना की और देवदासी को गले लगाकर उसका मुख चूम लिया। यह दृश्य देखकर दासियों और पुजारियों को बड़ा अचंभा हुआ। रानी और देवदासी वहीं बैठ गई। रानी, तुम्हें भागवत किसने पढ़ाया? देवदासी, मेरे भैया ने। जब वे छुट्टियों में यहाँ आते, तब मैं रात को उनके यहाँ जाकर भागवत पढ़ा करती थी। जब कई छंदों को मैं कंठस्थ नहीं कर पाती, भैया मुझे मारते थे। मेरे बाबूजी भी बहुत झल्ला उठते। बाबूजी के चल बसने के बाद भैया ने मुझे उन सारे छंदों का अर्थ समझाया। वे जब भागवत का अर्थ समझाते तो ऐसा लगता कि मैं स्वयं भगवान के सम्मुख बैठी हूँ। भैया ने भगवान पर कुछ छंद लिखे हैं, कितने अच्छे हैं वे। रानी, तो तुम्हारे भैया कवि भी हैं? यह बात तो किसी को ज्ञात नहीं। देवदासी, भैया अपनी रचनाएँ किसी को नहीं दिखाते, कहते हैं समय आएगा तब दिखाऊँगा। रानी, तुम्हारे भैया आज मंदिर क्यों नहीं आए? देवदासी, भाभी आई हुई हैं, भैया से मिले हुए 6 दिन हो चुके हैं। रानी, तुम क्यों नहीं मिलने गई? देवदासी, माँ उन्हें देख आई हैं, यदि मैं भी जाती तो भैया मेरे साथ मंदिर चले आते। इसी से माँ ने कहा, जब तक भाभी मायके नहीं लौट जाती, मुझे भैया के यहाँ नहीं जाना चाहिए। माँ का कहना है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो भैया मेरे ही साथ बातों में लग जाएंगे और शायद नई बहू को यह अच्छा न लगे। रानी, तो फिर तुम्हारे भैया स्वयं तुम्हें देखने क्यों नहीं आते? देवदासी, नहीं आते, मुझे ही उनके यहाँ जाना पड़ता है, पर जब मैं चली जाती हूँ तब फिर मुझे छोड़कर भैया एक क्षण भी नहीं रहते। रात को बड़ी देर गए, मुझे मेरे घर तक पहुँचा कर लौट जाते हैं, घर के भीतर नहीं आते। रानी, तुम्हारी माँ उन्हें भीतर नहीं बुलाती? देवदासी, मेरी माँ भैया से बोलती तक नहीं। भैया के नाम से उसे एक प्रकार का भय, आदर, प्रेम, सचमुच क्या है मैं नहीं कह सकती। वह भैया से नहीं बोलती, भैया आंख उठाकर माँ की ओर नहीं देखते, किसी की भी ओर नहीं देखते। रानी, रामेश्वर शास्त्री ने सारी जायदाद बर्बाद कर दी है ना, अब उस परिवार की जीविका का क्या आधार है? निर्वाह में कठिनाई हो रही है ना? देवदासी कुछ नहीं बोली। दोपहर हो चुकी थी, घिरे हुए बादल कुछ छट गए और जलप्रपात की भांति धूप निकल आई। नागेश्वर स्वामी के मंदिर के ध्वजा पर एक गरुड़ छप से आ बैठा। बाहर लगी हुई घंटियां मुखरित हो उठीं। रानी ने सिर उठाकर देखा, धूप में घंटियां सोने की भांति चमक रही थीं। उनकी चमक सुइयों की भांति आंखों में चुभने लगी। रानी, गिरिका, तुम्हें श्री कृष्ण करुणामृत के श्लोक आते हैं? किंकणी किण किण किणिर्भस है, यह श्लोक जानती हो? देवदासी, मुझे भैया ने करुणामृत नहीं पढ़ाया, मैंने कहा तो बोले तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। भोजन का समय बीत चुका था। भूख के मारे गिरिका का मुखमंडल मुरझा सा गया। उस दशा में वह और भी सुंदर लग रही थी। रानी ने कहा, शायद तुम्हें भूख लगी है, लौट चलें। दोनों ने विदा ली। दिन ढल रहा था। रानी साहिबा की गाड़ी धर्माराव के आंगन में आ रुकी। उसे देखकर सावित्री देवी आंगन में आ खड़ी हुई। रानी गाड़ी से उतरकर भीतर आ रही थी। सावित्री देवी ने रानी को आज तक अपने घर में प्रवेश करते कभी नहीं देखा था। आज यह कृपा सहसा क्यों और कैसे हुई, सावित्री देवी समझ नहीं पा रही थी। रानी साहिबा के बैठने के लिए पुराना रत्न कंबल बिछाया गया। वह कंबल रामेश्वर शास्त्री के वैभवपूर्ण दिनों की स्मृति का अवशेष था। रानी बैठ गईं। सावित्री देवी कहने लगीं, आज माँ जी की हम पर विशेष कृपा हुई है, हम बड़े भाग्यवान हैं। आपका आदर सत्कार करने के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं है। रानी बोली, बहू रानी को देखने आई हूँ। इतने में अरुंधति वहाँ आ पहुँची। वह अभी अभी श्रृंगार करके आई थी। उसके शरीर पर अपनी माँ के कुछ गहने तथा रंगा जम्मा द्वारा भेंट की गई साड़ी थी। मस्तक पर कुमकुम का तिलक विद्यमान था। उसके इस अनुपम लावण्य को देखकर रानी विस्मय विमुग्ध रह गई। यही लड़की किसी जमींदार के यहाँ जन्म लेती तो कितने ऐश्वर्य से सुशोभित होती। संभवतः रामेश्वर शास्त्री के घर से लक्ष्मी के निर्वासन के उपरांत इस नई लक्ष्मी ने घर में पदार्पण किया होगा। उसकी सुंदरता विलक्षण थी। वह नदी बाढ़ की भांति शरीर पर पहने हुए गहनों और कपड़ों आदि को लांघ कर आसपास के खेतों को नहीं डुबोती थी। लावण्य की वह नदी किनारों तक लबालब होकर भी किनारों को तोड़ती नहीं थी। उसके महान विस्तार ही में विनय की झलक थी। वह अत्यंत विशाल थी, पर उसका प्रवाह कूलों के मध्य ही में चल रहा था। अरुंधति आकर बैठ गई। रानी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अरुंधति ने अपना नाम बताया। फिर रानी पूछने लगी, तुम्हारे पति का नाम क्या है? अरुंधति लजा गई। रानी कहने लगी, उतने बड़े विवेकी पुरुष की पत्नी बनी हो, तुम बड़ी भाग्यवान हो। पति का आदेश मानती रहना, नहीं तो दुख पाओगी। पति का कहना मानती रहोगी तो फिर क्या कहने हैं तुम्हारे। गिरिका को देखो, वह बड़ी भक्तिन बन गई है। ऐसा लगता है कि हमारे प्राचीन भक्तगण उसके आगे टिक नहीं पाएंगे। ऐसी है गिरिका, कितना महान है उसका व्यक्तित्व। सावित्री देवी, यह गिरिका कौन है देवी जी? रानी, रत्नगिरी की लड़की। अरुंधति ने सोचा, मेरे पति ने गिरिका के विषय में जो कुछ कहा था वही आज रानी कह रही हैं। क्या देवदासी इतनी अनन्य भक्तिन है? तब तो उससे अवश्य मिलना चाहिए। उसके उद्धार का मेरे पति से क्या संबंध है? रानी, तुलसी की बगिया में गांजे का पौधा क्यों उगेगा? पर तुम्हें एक बात बताऊंगी, धर्माराव सचमुच लाखों में एक है। पूर्व पुण्य के फलस्वरूप ही तुम उसकी पत्नी बनी हो। तुम अरुंधति हो, वह वशिष्ठ है। ऐसा ही होना चाहिए तुम दोनों का व्यवहार, तब तुम गिरिका से भी अधिक भाग्यवान बनोगे। रानी ने अपने गले का चंद्रहार निकालकर हाथ में ले रखा था और मुँह से कुछ बोल रही थी। इतने में धर्माराव घर लौटा तो रानी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कहने लगा, माताजी, आज आप हमारे घर क्या पधारी हैं? पवित्र भागीरथी एक छोटे से पंछी के नीड पर बह निकली है। पिताजी के देहांत के बाद आज ही पहली बार हमारे भाग खुले हैं। माँ जी, आप हम निर्धनों के यहाँ पधारी, आपके योग्य हमारे यहाँ कोई आसन भी नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। यह कहकर धर्माराव वहीं खड़ा हो गया। अरुंधति भी खड़ी हो गई। रानी ने दोनों को बिठाया और बोली, तुम्हारी पत्नी को देखने आई थी गिरिका के कहने पर। धर्माराव, गिरिका यहाँ 3 रोज से नहीं आ रही है। रानी, मुझसे कह रही थी कि तुम दोनों के नए नए दाम्पत्य सुख में बाधा डालना उसे ठीक नहीं लगता। धर्माराव हंसकर बोला, यह बात नहीं, वह शायद घबरा रही थी कि उसके और उस पति के दाम्पत्य सुख में कहीं मैं ही बाधा न डालूं, वह बड़ी झूठी है। रानी, तो क्या देवदासी का ब्याह हुआ है? हाँ हाँ, आजकल उनमें भी से भी कुछ स्त्रियाँ ब्याह करने लगी हैं। तब मुझसे उसने क्यों नहीं बतलाया भला? धर्माराव, यह बात नहीं। फिर वह उठकर बोला, माँ जी, मैं अभी आया, और अपने कमरे में गया। वहाँ से उसने अरुंधति को भीतर बुलाकर कहा, कुछ फल फूल रानी जी को भेंट करो। अरुंधति ने मंदार, सेवती, केवड़ा आदि के फूल और 10-5 केले लाकर रानी के सम्मुख रख दिए। रानी ने हंसकर अपना चंद्रहार अरुंधति को देना चाहा। अरुंधति ने उसे ग्रहण करने में संकोच किया। रानी बोली, कोई बात नहीं, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, ले लो। अरुंधति बहुत लजा गई, उसके हाथ आगे न बढ़ पाए। यह देखकर रानी बोली, ओहो, शायद पतिदेव की अनुमति चाहिए। फिर उन्होंने धर्माराव को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी मेरी यह भेंट ग्रहण करना नहीं चाहती, अब तुम ही बताओ, क्या मुझे यह देने का अधिकार नहीं? क्या तुम्हारी पत्नी को मुझसे लेने का अधिकार नहीं? पति पत्नी की चितवने बिना किसी को पता लगे ही आपस में मिलकर कुछ वार्तालाप कर गईं। अरुंधति ने हाथ आगे बढ़ाया। रानी बोली, नहीं जी, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मेरा बेटा स्वयं अपने हाथ से तुम्हारे गले में पहनाएगा। यह कहकर उन्होंने हार धर्माराव के हाथ में थमा दिया। उसे लेकर धर्माराव भी लजा गया। रानी, बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम्हारे और तुम्हारी माताजी के बीच सृष्टिकर्ता विद्यमान है। तुम्हारे और मेरे बीच वेणुगोपाल स्वामी विद्यमान है। तुम्हें देखकर हमें खुशी होगी, संतोष होगा, बस इसके अतिरिक्त हम कर क्या सकते हैं। धर्माराव ने चंद्रहार की ओर देखा। हार का मूल्य कोई 550 होगा। ऐसा लगता था कि अभी अभी शान लगाई गई हो। धर्माराव की उंगलियां कांपने लगी। सावित्री देवी, बेटा उसे बहू के गले में पहना दो, रानी माँ देखना चाहती हैं। धर्माराव ने पत्नी के गले में चंद्रहार पहनाया। दोनों के मुख कमलों पर लज्जा और मुस्कान की अनेक तरंगे लौट गईं। रानी, बेटा कॉलेज खुले कितना समय हुआ है? धर्माराव कुछ सोचकर बोला, 1.5 महीना हुआ होगा। रानी, यहाँ तुम दोनों को आए 3 रातें बीत चुकी हैं ना, अब 2-3 दिन से यहाँ से चले जाओ और कॉलेज में प्रवेश करो। प्रवेश के लिए कितने रुपये चाहिए? यह सुनकर धर्माराव अवाक रह गया। उसने नहीं सोचा था कि धन की ऐसी असमय वर्षा होगी। रानी, 100 रुपये लगेंगे। धर्माराव, नहीं माँ, 50 काफ़ी हैं। रानी, कल मैं 100 रुपये भेज दूंगी, अच्छा दिन देख कर चले जाना, BA की परीक्षा होने के बाद देखा जाएगा। गिरिका कह रही थी कि तुमने वेणुगोपाल स्वामी के वर्णन में कुछ कविताएं लिखी हैं, फिर कभी सुनूंगी। धर्माराव के मन में आश्चर्य पर आश्चर्य का आक्रमण हो रहा था। थोड़ी देर बाद रानी चली गई, चंद्रोदय होने लगा था। रात को हवा सहम सी गई, कमरे में रहना कठिन हो गया। पति पत्नी पीछे आंगन में खाट लगाकर सो रहे थे। गर्मी के मारे अरुंधति ने अपनी चोली उतार दी। धर्माराव ने उसका आंचल भी न रहने दिया। पत्नी का आंचल संवारना और पति का उसे हटाना, यही क्रम 10-1 बार चलता रहा। अंत में पत्नी ने अपना हटा हुआ आंचल हटा रहने दिया। उसके सुडौल गले में चंद्रहार ऐसा लग रहा था मानो नदी के सैकत पर कोई मस्त नाग झूम रहा हो। चंद्रहार की टिकियों पर पूर्ण चंद्र की 16 कलाओं से युक्त चांदनी पड़ने से चहुओं बिखरी हुई अनूठी कांति में धर्माराव की आंखें चौंधिया गईं। धर्माराव ने अपने हाथों की हलचल से उस कांति को और भी बिखेर दिया। अरुंधति ने पति के हाथ पकड़ लिए। धर्माराव ने झुककर हार को चूम लिया। हार के बहाने वह अरुंधति के सारे वक्षस्थल का चुंबन कर रहा था। अरुंधति के अनजाने ही उसके हृदय की ग्रंथि भी संपूर्ण खुल गई और उसमें चंद्रमा की भांति 16 कलाएं उदित हुईं। उसके मुख पर श्वेत बिंदु चमके। हवा करने के लिए उसकी साड़ी अपर्याप्त सिद्ध हुई। उसके हाथों में दर्द होने लगा। धर्माराव ने उसके शरीर का संवाहन किया। अरुंधति ने उसे रोका। धर्माराव खाट से उतरकर उसकी ओर निहारने लगा। अरुंधति, घूरते क्यों है मुझे? धर्माराव, ऊपर गगन में वह चंद्रमा है और नीचे यह चंद्रमा, दोनों ही 16 कलाओं से परिपूर्ण है, परंतु उस चंद्रमा में कलंक है, इसमें नहीं। तुम निष्कलंक हो, संपूर्ण कलाओं से शोभित पूनम का चांद। मलयानिल की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। अरुंधति, देवदासी का ब्याह हुआ है, इसका क्या रहस्य है? धर्माराव ने अरुंधति के कान में कुछ फुसफुसाया। अरुंधति तुरंत शैया से उठी। उसने साड़ी पहनी, पांव धोए और आंखें पोछती हुई वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर की ओर मुंह करके बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करने लगी। उसे यहाँ आए 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थी। अगले दिन उसके पिता उसे यहाँ से ले जाने वाले थे। वह सोच रही थी कि देवदासी को कैसे देख पाऊंगी, पति को कैसे छोड़ सकूंगी, प्राण कैसे टिक पाएंगे। अरुंधति, आप फिर पढ़ाई के लिए जाएंगे? धर्माराव, 4-5 दिन में चला जाऊंगा। अरुंधति, मुझे साथ ले चलेंगे? धर्माराव, तुम्हें क्या उठा ले जाऊं? अरुंधति, यही तो हुआ है, अब आना कहने किस बात की, कहाँ पढ़ेंगे? आधा BA तो पढ़ चुके हैं ना? धर्माराव, वह आधा भी फिर से पढ़ना होगा। मछलीपट्टनम जानी पहचानी जगह है, गुंटूर हमारे गाँव से निकट पड़ता है, सोच रहा हूँ क्या करूँ। अरुंधति, मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं नहीं मानने की। धर्माराव, ना मानोगी तो क्या करोगी? मेरे गले पर पांव रखकर रौंद दोगी, सिर पर चढ़कर नाचोगी? अरुंधति उसके गले से लिपट गई और उसके मुख से अपना मुख सटा दिया। पति के निश्वास का परिमल उसके कपोल पर तरंगित हो उठा। सेवंती, केतकी, कस्तूरी आदि का समिश्र सौरभ हल्के हल्के पवन तथा छिटकी चांदनी की उलझन में उलझ कर रह गया।